सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं जय धवलंगते नाउरियसयलभुवनभवनगणो केवलनाणशरीरो अनंजनो नामो चंदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जय धौला टीका है, जो कषाय पाहुड़ और चूर्णी सूत्र पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है गुणधर भट्टारक और श्री यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने श्री भगवान महावीर के द्वारा उपदेशित जो दिव्य ध्वनि उसके अनुसार इसकी रचना की है। प्रथम अधिकार पेज्य दोष विहत्ति, उसकी बात अभी हमारी चल रही है और पृष्ठ संख्या 30 पर हम आ गए हैं। 30 30 हाँ। देखो ग्रंथ के शुरू में कषाय प्रावृत में तो नाम बता दिया और वो कहाँ से दिव्य ध्वनि से कौन से प्रावृत से कैसे आया है उसकी बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि जो अंग और अंग बाह्य में से जो अंग है 12 अंग में से दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के ज्ञान प्रवाद नाम के 5वें पूर्व से उसकी 10वीं वस्तु में से और उसके तृतीय प्रावृत जिसका नाम पेज्य दोष प्रावृत या कषाय प्रावृत है उसमें से ये नया कषाय प्रावृत किसने इसकी रचना की? गुणधर आचार्य ने। उसमें 233 गाथा सूत्र है, सूत्र है परंतु गाथा के रूप में है। उन गाथाओं पर चूर्णी सूत्र बनाए, उनका नाम है यति ऋषभ आचार्य। और फिर उन दोनों ही ग्रंथों पर वीरसेन आचार्य ने जय धौला टीका लिखी है। अब ग्रंथ के आदि में तो कषाय प्रावृत में तो नाम बता दिया, परंतु 5 प्रकार होते हैं उपक्रम जिसको कहते हैं कि शिष्यों को ग्रंथ पढ़ने के लिए उसमें उनकी प्रवृत्ति हो इसलिए नाम बताते हैं, उसका आनुपूर्वी ने क्रम बताते हैं, संख्या में क्रम पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। जैसे हमने कहा ना 5वां ज्ञान प्रवाद उसको आनुपूर्वी कहते हैं नाम, फिर प्रमाण बताएंगे ग्रंथ का और फिर उसका वक्तव्यता बताएंगे और अर्थाधिकार बताएंगे। उसमें से तो उसका क्रम जो अनुपूर्वी उसकी विस्तार से चर्चा हो चुकी। नाम के बारे में अभी कहते हैं 6 प्रकार का नाम है, धौला में हमने देखा था नाम 10 प्रकार के होते हैं, वो जो 10 प्रकार है उसी को इन 6 प्रकारों में यहाँ गर्भित किया है, क्योंकि चूर्णी सूत्रकार ने सूत्र में ही बताया है कि नाम 6 प्रकार के हैं। उसके बाद वीरसेन आचार्य स्वयं बताएंगे ये 6 में ही 10 कैसे गर्भित है। तो उसमें हमने देखे थे कौन कौन से, एक तो गौण्य पद होता है, गुण के अनुसार नाम देना उसको गौण्य पद कहते हैं। नो गौण्य पद, गुण की कोई अपेक्षा नहीं है, जैसे हम बच्चों का कोई भी नाम रखते हैं उनके गुण के अनुसार नहीं रखते तो वो नो गौण्य पद हो जाएगा। जैसे महावीर को वीतराग सर्वज्ञ कहना वो तो उनके गुणों की अपेक्षा कहते हैं हम, तो वहां तो वो गौण्य पद होगा। और हमारे बच्चों का नाम कोई हमने सर्वज्ञ रखा या महावीर रखा तो उसमें तो कोई गुण की अपेक्षा नहीं है, वो नौ गौण्य पद हो जाता है। ये 2 पद तो हमने विस्तार से देखे थे। उसके बाद हमने आदान पद देखा था, आदान पद ने संयोग की अपेक्षा जो कोई बात है उसको आदान पद में हमने देखा था। जैसे दंड को धारण करने वाला वो दंडी, छत्र को धारण करने वाला वो छत्री, इस तरह से उसमें वो आदान पद में आदान पद नाम जो है, जैसे गर्भिणी, गर्भ को धारण करने वाली स्त्री उसको गर्भिणी कहेंगे, इस तरह से उन्होंने उसके उदाहरण भी दिए थे। अब हम 30 पृष्ठ पर आते हैं। आदान पद के बाद हमने दो और भी देखे थे, उपचय पद और अपचय पद। उपचय पद में क्या लिखा था कि अवयव जो है एक्स्ट्रा, यानी जो एवरेज से कोई उसमें डिफॉर्मिटी है, किस प्रकार की, कोई लंबा नाक है और लंबे कान है, दीर्घ नाक है, या किसी की मान है ऐसे टेढ़ी होगी, ये उस हिसाब से उस जीव को उस नाम से पुकारना। यहाँ लिखा था गलगंड, यानी गले में ऐसे ग्रंथि हो जाती बड़ी, तो उसको गलगंड कहते हैं। दीर्घ नासा यानी लंबी नाक वाला, लंबे करने वाला, ये उपचय पद हो गए। और जहाँ अवयवों में कोई हीनप होती है, ये लूला है, लंगड़ा है, हम कहते ना हाथ नहीं है तो थोटा कहेंगे, कनचिदा, नकटा, काना, ये जो कोई बात है हम कहते अंधा है, तो उनके अवयवों की हीनता दर्शाती है। अब इस पर प्रश्न यहाँ चलेगा, शंका 30 पृष्ठ पर आते हैं अभी हम। प्राधान्य पद नामों का, अर्थात जो नाम किसी की प्रधानता के कारण व्यवहृत होते हैं, उनका इन पूर्वोक्त नाम पदों में से किनमें अंतर्भाव होता है? देखो उसका समाधान, अभी हमने कौन कौन से देखे, गौण्य, नो गौण्य, आदान, अपचय और उपचय। तो यहाँ पूछ रहे हाँ, प्राधान्य पद नाम जो है उसका किस में अंतर्भाव होता है, उसका उत्तर देते हैं। बगुले और कौवे में अनेक वर्णों के रहने पर भी बगुला सफेद होता है और कौवा काला होता है, इस प्रकार जो नाम निर्देश किया जाता है वह गौण्य पद नामों में अंतर्भूत हो जाता है, क्योंकि गुण की प्रधानता से द्रव्य में इन नामों की प्रवृत्ति देखी जाती है। तथा ये समझ में आया, मुख्यता किसकी, वो काला है ना, वो काला रंग की मुख्यता है, तो उसको उसके गुण के अनेक रंग भी होते हैं, मेजॉरिटी इसकी है। और ऐसा भी है ना, बगुले में ऐसा भी है कि उसकी चोंच अलग कलर की है, या बगुले भी अलग अलग कलर के हो गए, इस अपेक्षा से यहाँ बताते हैं। तथा वन में कदम्ब, आम और नीम आदि अनेक वृक्षों के रहने पर भी, वन में तो बहुत प्रकार के वृक्ष है, फिर भी एक जाति के वृक्षों की बहुलता से यह नीम वन है, इस प्रकार का जो निर्देश किया जाता है उसका आदान पद में अंतर्भाव हो जाता है। यानी वन में बहुत प्रकार के वृक्ष है, हम कहते ना ये हमारा आम्र वन है, तो आम्र वन में क्या कोई दूसरे वृक्ष नहीं, नीम का भी दो चार पेड़ उसके भी होंगे, अन्य भी फलों के भी हो सकते हैं, फिर भी उसको आम्रवन जो, क्योंकि वहाँ उसकी बहुलता है, तो उसको आदान पद में लिया। क्योंकि ग्रहण किए गए वृक्ष के संबंध से इस संज्ञा की प्रवृत्ति देखी जाती है, हम विशिष्ट वृक्षों के संबंध से ही उसको आम्रवन या नीमवन कहते हैं। अब राजा, असिधर, धनुर्धर, सुरलोक, सुरनगर, भारतक, ऐरावतक, शारद, वासंतक, क्रोधी और मानी इत्यादि द्रव्य संयोग, क्षेत्र संयोग, यानी संयोग की अपेक्षा, किसका संयोग, द्रव्य संयोग की अपेक्षा उसको कोई नाम होगा, क्षेत्र के संयोग की अपेक्षा नाम होगा, काल के संयोग से नाम होगा और भाव के संयोग से नाम होगा, तो ऐसे जो संयोग रूप नाम पद है वे भी आदान पद में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। इसका विशेषार्थ बताएंगे अभी नीचे, क्योंकि यह इसका है अथवा यहाँ यह है, इस प्रकार की विवक्षा होने पर इन नामों की प्रवृत्ति देखी जाती है। ये जो हमने पढ़ा है उसका विशेषार्थ बताते हैं। विशेषार्थ हाँ, अभी बताएंगे ना, यहाँ पर देखो, राज्य का स्वामी होने से राजा, असी का अर्थ मालूम है, हाँ असी यानी तलवार, तलवार धारण करने से असीधर, धनुष धारण करने से धनुर्धर। अब सुरलोक, देवताओं का निवास स्थान होने से सुरलोक, एक क्षेत्र की अपेक्षा है ना उसमें, और सुरन नगर यानी देवताओं के नगर। भरत क्षेत्र में जन्म लेने से भारतक, हम कहते हैं भारतक अपनी भाषा में इंडियन या भारतीय कहते अभी हम। ऐरावत क्षेत्र में जन्म लेने से ऐरावतक, अब ये तो क्षेत्र की बात हुई। अब काल, शरद काल, शरद काल ने शरद ऋतु, तो शरद काल के संबंध से शारद, वसंत काल के संबंध से वासंतक। पहले तो जिस महीने में जन्म लिया ना उस महीने के नाम से भी नाम देने की पद्धति है, फाल्गुनी, श्रावणी या श्रावण ऐसा नाम देते हैं, अश्विनी, अच्छा स्वाति, वो तो नक्षत्र, परंतु वो देखते नहीं कि वो नक्षत्र में जन्मा है कि नहीं, इन्हें पद्धति क्या है, ये तो महीने के हिसाब से तो उसको नाम देते हैं। स्वाति तो ऐसा भी नाम रखते हैं अपने यानी चॉइस से, वो नक्षत्र का है इसलिए नहीं, उस नक्षत्र में जन्म लिया इसलिए नहीं रखते हैं, वो तो जैसे नाम पद में आएगा वो नौ गौण्य पद में, वो गुण से या कोई क्षेत्र से संबंध से कोई उससे लेना देना नहीं है। क्रोध भाव के होने से क्रोधी, अब ये भाव के साथ संयोग, और मान भाव के होने से मानी, संज्ञा का व्यवहार है, संज्ञा यानी नाम। अतः द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की विवक्षा वश व्यवहारित होने के कारण, व्यवहारित नहीं वो व्यवहार में आने के कारण उक्त संज्ञाएं आदान पद में अंतर्भूत हो जाती है, यानी द्रव्य के संयोग से हो, क्षेत्र से, काल के या भाव से, तो उसको किस में ले लेंगे, आदान पद में। क्रोधी मानी कहना वो भी आदान पद हो जाएगा। अवयव पद नाम, एक प्राधान्य पद की बात बताई थी उन्होंने, छह में और एक्स्ट्रा कौन कौन से, तो प्राधान्य पद लिया है, और फिर अवयव पद नाम का भी एक पद नाम होता है, उसको किस में लेना है, तो अपचय और उपचय में ले लेंगे उसको। तो अवयव पद नाम अपचय पद नामों और उपचय पद नामों में अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि अपचय और उपचय पद नामों से अवयव पद का भेद नहीं पाया जाता, यानी कहीं तो अवयवों की अधिकता और कहीं हीनता है, इसलिए अवयव पद कहो या वो कहे एक ही बात है। अर्थात अवयव विशेष के कारण यानी विशिष्ट अवयव के कारण जो नाम पड़ता है उसे अवयव पद नाम कहते हैं। कहते ना ये लंबोदर नाम कैसा पड़े, बड़ा पेट है तो लंबोदर, यह नाम या तो किसी अवयव के बढ़ जाने से पड़ता है या घट जाने से पड़ता है, जैसे कनछिदा और लंब करना, जिसका कान में छेद हो वो कनछिदा कहते हैं या फटा हुआ हो। हाँ, अतः यह अवयव नाम पद अपचय पद और उपचय पद में गर्भित हो जाता है। शंका, शंका नहीं, नहीं। शुकनासा, ये अभी और शंका पूछ रहे, अन्य अन्य अवयवों के बारे में जो कोई नाम प्रसिद्ध है उसके बारे में पूछ रहे। शुकनासा, शुक का अर्थ मालूम है, हाँ तोता, मराठी में पोपट है। शुकनासा, कंबुग्रीवा, ग्रीवा यानी डोक मान, ये कंबू की बात, शंख, शंख के समान, गर्दन, ग्रीवा यानी गर्दन, कंबू यानी शंख, वो आगे आनी है बात। शुकनासा, कंबू ग्रीवा और कमल दल नयना इत्यादि संख्याएं स्वतंत्र नाम नहीं है, क्योंकि समास के अंतर्भूत हुए इव शब्द के अर्थ के संबंध से, क्या कहते हैं ए इव कहाँ, यहाँ शुक नासा यानी शुक इव नासा, शुक के समान नाक है जिसकी या जिसका ऐसा वो शुक नासा, कमल दल नयना, कमल दल इव नयना, यानी कमल दल के समान है नेत्र जिसके। ये समास कैसे तैयार होता है, वो बीच में जो है ना इव, उसके समान, उसका लोप कर देते हैं और उसका एक शब्द बना देते हैं, उसको विशेषण बना देते हैं। तो इव शब्द के अर्थ के संबंध से इनकी द्रव्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। विशेषार्थ, जिस स्त्री की नाक तोते की नाक की तरह हो उसे शुकनासा कहते हैं, जिस स्त्री की गर्दन शंख के समान होती है उसे कंबुग्रीवा कहते हैं, इसी तरह जिसकी आंखें कमल की पांखुरी की तरह हो वह कमल दल नयना, जिसका मुख चंद्रमा की तरह गोल सुंदर आभायुक्त हो वह चंद्रमुखी, तथा ये ऊपर का मैंने कुछ शंका में से मैंने नीचे आ गई। हाँ देखो देखो, फिर शंका में ये सारे शब्द आए थे, मैं समाधान की उसमें चली गई, फिर शंका पढ़ते देखो, फिर ऊपर चले जाना। शुकनासा, कंबुग्रीवा, कमल दल नयना, चंद्रमुखी और बिंबोष्ठी इत्यादि नाम तो अपचय पद और उपचय पद नामों से पृथक पाए जाते हैं, ऐसे शंकाकार का शंका, उसकी शंका है। उसका समाधान किया है कि ये जो सारी संज्ञाएं हैं वे स्वतंत्र नाम नहीं है, अवयवों की अपेक्षा रखते हैं ना वो, तो स्वतंत्र नाम तो है ही नहीं है, क्योंकि समास जो हुआ, शब्द तैयार जो हुआ है उसमें इव शब्द जो है वो इव शब्द के अर्थ के संबंध से इनके द्रव्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। अब हम नीचे आते, जहां तक पढ़ा है चंद्रमुखी तक पढ़ा था, तथा जिसके ओष्ठ पके हुए बिंब फल की तरह लाल हो वह बिंबोष्ठी कहलाती है, यह इन शब्दों का अर्थ है, पर इनका उपयोग उपमा में ही किया जाता है, यानी उपमा देने के लिए ये बताया जाता है, ऐसा नाम नहीं है वो। इसके समान ये है, उपमा अलंकार है ना, तो चंद्रमुखी वो नाम अगर रख दे तो वो तो नौगुण्य पद में आ जाएगा, हमने अपनी बच्ची का नाम अगर चंद्रमुखी रखा वो उसकी बात नहीं है, परंतु किसी स्त्री है, कोई स्त्री है और उसको है चंद्रमुखी, यानी उसको तो उपमा देकर बुला रहे हैं या उसका वर्णन कर रहे हैं, तो वो अलग नाम तो नहीं है, उस स्त्री का वो नाम नहीं है, विशेषण बना है उसका वो, तो उपयोग उसका उपमा में ही किया जाता है। इसलिए ये स्वतंत्र रूप से अवयव पद नाम न होकर केवल प्रशंसा रूप अर्थ में, उपमार्थ में विशेषण रूप से आते, लिखा ना विशेषण रूप, किसी स्त्री का वर्णन करना है वो तो चंद्रमा के समान है, उसकी आंखें कमल के समान है वगैरह वगैरह, वही उसका वर्णन आता है, वो उसका नाम नहीं है। अब अनादि सिद्धांत पद नाम के भी नाम होते हैं, कल हमने जो 10 नाम पढ़े थे, देखो फुटनोट में पढ़े थे ना हमने 10 नाम, या 27 पृष्ठ पर पढ़े थे शायद, 27 पृष्ठ पर फुटनोट में नीचे से चौथी लाइन, गौण पदे नौगौण पदे, ये हमने दो ही पढ़े ना, आदान पदे परिवक्ष पदे, ये प्रतिपक्ष पद उसमें आया था, और अनादि सिद्धांत पदे यानी अनादि सिद्धांत पद जो है, प्राधान्य पदे ने प्राधान्य पद उसकी बात अभी की थी, नाम पदे, प्रमाण पदे, अवयव पदे और संजोग पदे, ये ऐसे वहां 10 भेद किए थे और यहाँ तो 6 ही भेद किए हैं, इसलिए यहाँ ये जो बात बताते हैं, ये जो अनादि सिद्धांत पद है उसके बारे में अभी यहाँ बताएंगे। अनादि सिद्धांत पद ने अभी जीव द्रव्य का नाम, अनादि से जीव द्रव्य चलता आया है, जो कोई चीज का नाम पहले से ही वही चलता आया है उसको अनादि सिद्धांत पद कहते हैं। देखो अनादि सिद्धांत पद नामों में जो नाम अनादिकालीन गुण के संबंध की अपेक्षा से प्रवृत्त हुए हैं, ये ना के ऊपर बिंदी आई है, जैसे जीव, ज्ञानी, चेतनावान, वे गौण्य पद और आदान पद में अंतर्भूत हो जाते हैं, तथा जो नाम नौगौण्य है अर्थात गुण की अपेक्षा व्यवहृत नहीं होते वे नवगौण्य पद नामों में अंतर्भूत हो जाते हैं। शत, सहस्र इत्यादि प्रमाण पद नाम भी गौण्य पद में ही अंतर्भूत होते हैं, क्योंकि शतत्व आदि रूप प्रमाण द्रव्य का गुण है, यह प्रमेय में ही पाया जाता है। अर्थात इन नामों से उस प्रमाण वाली वस्तु का बोध होता है, इसलिए ये गौण्य पद नाम है। यानी अनादि सिद्धांत पद जो है वो उन्हीं में कोई गौण्य में, कोई नवगौण्य में, कोई प्रमाण वगैरह में अंतर्भूत हो जाते हैं। अरविंद शब्द की अरविंद यह संज्ञा नाम पद है। अरविंद का अर्थ क्या होता है? हाँ अरविंद भाई, कमल। हाँ हम कहते हैं मुखारविंद से, जिनेन्द्र भगवान के मुखारविंद से ये उनको उपमा दी जाती है। उसका अनादि सिद्धांत पद नामों में अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि अनादि काल से अरविंद शब्द की अरविंद इस संज्ञारूप अर्थ में प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात अरविंद शब्द का अनादि काल से अरविंद इस संज्ञा में ही व्यवहार होता रहा है, इसलिए अरविंद शब्द की अरविंद संज्ञा अनादि सिद्धांत पद नाम है। यानी उसी अर्थ में उसी वस्तु में उसके नाम दिया जाता है। तथा धर्म, अधर्म, काल, आकाश, जीव और पुद्गल आदि अनादि सिद्धांत पद नामों का छह नामों में यथा योग्य अंतर्भाव पहले कहा जा चुका है, इसलिए इस समय उसका कथन नहीं करते हैं। इसकी भी चर्चा पहले हो गई थी। अर्थात अनादि सिद्धांत पद नामों का, यानी अनादि सिद्धांत पद जो है वो कोई गौण्य में आते हैं, कोई नवगौण्य में आते हैं, इस तरह से उसको अलग, छह से अलग नहीं बताया। दस जब भेद किए थे तो उसमें तो अलग से बताए थे, परंतु इनका अंतर्भाव अन्य नामों में हो जाता है। तो अनादि सिद्धांत पद नामों का गौण्य पद, नौगौण्य पद आदि नामों में अंतर्भाव करने की विधि पहले बतला आए हैं। तदनुसार इन पूर्वोक्त संज्ञाओं का यथा योग्य अंतर्भाव कर लेना चाहिए, वो इंक्लूड हो जाते हैं अन्य अन्य नामों में। यहाँ अलग से उसके कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पूर्व में छह प्रकार के नामों का कथन किया गया है, और शेष नामों का उनमें अंतर्भाव कैसे हो जाता है यह बतलाया गया है। अतः नाम दस प्रकार का ही होता है, ऐसा एकांत रूप से आग्रह करके कथन नहीं करना चाहिए, किंतु नाम छह प्रकार का भी होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। भी लगाया ना, तो एकांत का आग्रह नहीं रहा। अब फिर विशेषत, यद्यपि श्री धवला आदि में नाम के दस भेद कहे हैं, और यहाँ चूर्णी सूत्रकार ने नाम के कुल छह भेद ही कहे हैं, तो भी इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ नाम के भेद गिनाते समय अधिक से अधिक भेदों के कथन करने की मुख्यता से दस भेद कहे गए हैं, और यहाँ अंतर्भाव करके छह भेद गिनाए गए हैं। किन किन नामों का किन किन नामों में अंतर्भाव हो जाता है यह पूर्व में दिखला ही आए हैं, इसलिए विवक्षा भेद से नाम के दस या छह भेद समझने चाहिए। ये नाम किस किस प्रकार के हो सकते हैं उसकी बात यहाँ आ गई। शंका, इन छह प्रकार के नाम पदों में से पेज्य दोष प्रावृत और कषाय प्रावृत ये नाम किन नाम पदों में अंतर्भूत होते हैं? स्वयं धवलाकार यहाँ शंका उठा के, क्योंकि नाम के प्रकार तो बतलाए, अपना प्रयोजन तो कषाय प्रावृत नाम से है, तो वो किस में अंतर्भाव हो जाता है उसका? समाधान, गौण्य पद नामों में ये दोनों नाम अंतर्भूत होते हैं, क्योंकि पेज्य, पेज्य का अर्थ होता है राग, दोष यानी द्वेष, और कषाय के धारण और पोषण गुण की अपेक्षा इन दोनों नामों की प्रवृत्ति देखी जाती है। विशेषण, प्र और आ उपसर्ग पूर्वक धारण करना और पोषण करना, यानी उसी को कषायों की प्रवृत्ति बढ़ना, कषाय धारण करना और उसका पोषण करना है ने, उसी में लगे रहना। हम लालन पोषण करते हैं, वो तो ऐसे कषाय उनका भी, ये वहां विस्तार से कथन करना उसको भी पोषण कहेंगे। हाँ, अब ये प्रावृत में क्या कहेंगे, उसका पोषण कैसे करेंगे, तो उसका पोषण करना है ने, उसका विस्तार से कथन करना। देखो प्र और आ उपसर्ग पूर्वक भ्रूं धातु से प्रावृत शब्द बना है। प्र और आ प्रा हुआ और भ्रूं धातु से प्रावृत हुआ। भ्रूं धातु का अर्थ धारण और पोषण करना है। तदनुसार पेज्य दोष प्रावृत और कषाय प्रावृत इन दोनों नामों को गौण्य नाम पदने में गर्भित किया है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इस पेज्य दोष प्रावृत या कषाय प्रावृत शास्त्र में जीवों को पेज्य दोष और कषाय के धारण करने और पोषण करने का उपदेश दिया गया है। किंतु यहाँ धारण का अर्थ आधार और पोषण का अर्थ विस्तार से कथन करना है। अर्थात यह पेज्य दोष प्रावृत या कषाय प्रावृत भ को भ्रू करना, कषाय प्रावृत, चौथी लाइन में कषाय प्रावृत लिखे ना, प्राभत हुआ है, प्रावृत करना। पेज्य दोष और कषायों के कथन का आधारभूत होने से धारण गुण वाला और उन्हीं का विस्तार से कथन करने वाला होने से पोषण गुण वाला है। ये जो ग्रंथ है वो क्या है, वो धारण करता है ना, उसका आधार है, उसका कथन का आधार है। इस दृष्टि से प्रावृत का सर्वत्र यही अर्थ करना चाहिए। जैसे आकाश प्रावृत का अर्थ आकाश को धारण और पोषण करने वाला शास्त्र होगा। समय सार को भी समय पाहुड़ कहते हैं ना प्रावृत। यदि यहाँ धारण और पोषण से जीवों के द्वारा आकाश के धारण करने और पोषण करने रूप अर्थ का ग्रहण किया जाए तो यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि न तो जीव आकाश को धारण ही कर सकते हैं और न पुष्ट ही। अतएव यही अर्थ होगा कि जो शास्त्र आकाश द्रव्य के द हुआ है, द्रव्य के कथन करने का आधारभूत है और जिसमें विस्तार से आकाश का कथन है वह आकाश प्रावृत है, इसी प्रकार प्रकृत में समझना चाहिए। जहाँ जहाँ प्रावृत शब्द आता है या पाहुड़ आता है तो उसका यही अर्थ समझना। कहते हैं ओच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुद केवली भणिनम, जैसा श्रुति केवली ने बताया है वैसा मैं करूँगा। समय सार के शुरू में बताया ना कुनकुंद आचार्य ने। शंका, पेज दोष प्रावृत और कषाय प्रावृत नाम अनादिकाल से पाए जाते हैं, अतः इनका अनादि सिद्धांत पद नामों में अंतर्भाव क्यों नहीं होता है? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि अनादि सिद्धांत पद का गौण्य पद और नौगौण्य पद में अंतर्भाव हो जाता है, अतः वह उक्त छह प्रकार के नामों से अलग नहीं पाया जाता। वह छह में ही उसका अंतर्भाव किया था तो यहाँ तो ये गौण्य पद की अपेक्षा से ही इसको लेना चाहिए। विशेषार्थ, पहले यह बतलाया है कि जो जीव आदि अनादि सिद्धांत पद जीवन गुण आदि की मुख्यता से व्यवहृत होते हैं, क्या कहते हैं, ये जो जीव आदि नाम है तो उसमें किसकी मुख्यता है, जीवन गुण की मुख्यता है, जिसमें जीवन गुण है उसको जीव द्रव्य कहेंगे, वे गौण्य पद नाम में। इसलिए जीव, जब हम कहते हैं जीव द्रव्य तो उसका गुण की अपेक्षा उसको जीव कहा है, तो उसका जो है तो अनादि से उसको जीव द्रव्य ही कहने में आया है, फिर भी उसका अंतर्भाव किस में होता है, गौण्य पद में। और धर्म आदि अनादि सिद्धांत पद धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वही है, उसमें तो कोई गुण की अपेक्षा नहीं है तो वो गुण की मुख्यता से व्यवहृत नहीं होते, है तो अनादि सिद्धांत परंतु गुण की मुख्यता से नहीं होते हैं। तो उसका नौगुण्य पद नाम में अंतर्भाव हो जाता है। धर्म अधर्म ये जो नाम है द्रव्यों के, उसको तो नौगुण्य पद में अंतर्भूत करेंगे, और जीव ये नाम पद है उसका गौण्य में अंतर्भूत करेंगे उसको। तदनुसार यहाँ पेजदोष प्रावृत और कषाय प्रावृत इन दोनों नामों का गौण्य पद नाम में अंतर्भाव किया है। इस प्रकार नाम प्ररूपणा समाप्त हो। ये समझ में आई बात? पहले अनुपूर्वी का कथन किया है ने, क्रम से बताया उसकी कौन सा, उसके कौन से क्रम पर है, शुरू से कितने नंबर पर है, अंत से कितने नंबर पर है, इस तरह से बात की। उसके बाद अभी यहाँ नाम के छह प्रकार बतलाए हैं, और कषाय प्रावृत कहो या पेजदोष प्रावृत, ये गौण्य पद नाम है ये भी बता दिया। अब उपक्रम का तीसरा भेद बताएंगे, प्रमाण। उपक्रम का पहला भेद अनुपूर्वी बताया, दूसरा भेद नाम बताया, तीसरा भेद यहाँ प्रमाण बता रहे हैं। तो यहाँ जो फ्लोर जैसी साइन है ना, ऊपर भी देखा है प्रमाणम सत्तविहम, तो ये क्या है, हमने देखा था ये साइन किसकी है, चूर्णी सूत्र की है। ये उपक्रम तीसरा चल रहा है अभी अपना, प्रमाणम सत्तविहम। प्रमाण सात प्रकार का है, नीचे जरा फुटनोट में पढ़ते हैं। प्रमाणम द्विविधम लौकिक लौकिक लोत्तर लोकोत्तर चाहिए, को रह गया फुटनोट में, यानी प्रमाण दो हो गए, लौकिक प्रमाण और लोकोत्तर प्रमाण। लौकिकम षोढ़ा मानोन्मान अवमान गणना प्रतिमान तत्प्रतिमान भेदात, यानी लौकिक जो लौकिक मान है ना प्रमाण, जिसको मान उन्मान, मान उन्मान अवमान गणना प्रतिमान और तत्प्रतिमान भेद से छह प्रकार का है। हाँ, छह प्रकार का। और लोकोत्तर चतुर्धा, लोकोत्तर मान जो है अलौकिक मान जिसको कहते हैं वो चार प्रकार का है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से चार प्रकार का है, यानी द्रव्यमान क्षेत्रमान कालमान और भावमान कहेंगे हम। अब कहते हैं प्रमाणम पंचविहम, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नय प्रमाण भेदे ही, अथवा प्रमाणम छव्यम नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रमाण भेदात, प्रमाण के ही अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग भेद यहाँ बतला गए। आगे लिखते हैं प्रमाणे चहुवे पन्नत्ते तम जहाँ दव प्रमाणे खेत प्रमाणे काल प्रमाणे भाव प्रमाणे, ये द्रव्य प्रमाण क्षेत्र प्रमाण काल प्रमाण भाव प्रमाण। फिर कहते हैं भाव प्रमाणे तिवे पन्नत्ते, भाव प्रमाण तीन प्रकार के हैं, तम जहाँ वे इस प्रकार गुण प्रमाणे नय प्रमाणे संख प्रमाणे, गुण प्रमाण नय प्रमाण और संख्या प्रमाण। गुण प्रमाणे दुवे पन्नत्ते, गुण प्रमाण भी दो प्रकार के हैं, जीव गुण प्रमाणे अजीव गुण प्रमाणे, जीव गुण प्रमाण और अजीव गुण प्रमाण। जीव गुण प्रमाणे तिवे पन्नत्ते तम जहाँ नान गुण प्रमाणे दंशन गुण प्रमाणे और चरित्र गुण प्रमाणे, ये ऐसे अलग अलग उसके अलग अलग ग्रंथों में जो प्रमाणे प्रमाणे सुधा ऐसा होगा शायद। अभी हम ये मूल पुस्तक पढ़ेंगे, 34 पृष्ठ पर आते हैं। अब इस सूत्र के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं। हमने देखा था ना प्रमाण सात प्रकार का ये सूत्र बताया चूर्णी सूत्रकार ने, और धवलाकार अभी इसका अर्थ करेंगे। ये जो साइन लिखी है 27 नंबर डाला है, ये जय धवलाकार की बात है, जय धवला में वीरसेन स्वामी ने इसको बताया। वह इस प्रकार नाम प्रमाण स्थापना प्रमाण संख्या प्रमाण, नाम स्थापना के बीच में संख्या को लिया, हमें हमेशा क्या लेते हैं नाम नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो छह हो जाते, यह तो सात कर दिए। नाम प्रमाण स्थापना प्रमाण संख्या प्रमाण द्रव्य प्रमाण क्षेत्र प्रमाण काल प्रमाण और ज्ञान प्रमाण लिखा, भाव प्रमाण नहीं लिखा, ज्ञान प्रमाण लिखा। हाँ, ये तो अभी बताएंगे। ये सातवां नंबर कौन सा है? ज्ञान प्रमाण। हाँ, ये प्रमाण के सात भेद है। जिसके द्वारा पदार्थ प्रमित किया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। ये प्रमाण की परिभाषा। प्रमित करना यानी क्या? निश्चित किया जाता है, मापा जाता है, जाना जाता है, प्रमेय कहते ना। नाम पद और आख्यात पद अथवा प्रमाण शब्द नाम प्रमाण है, क्योंकि इनसे अपनी तथा दूसरे द्रव्य और पर्यायों की परिचिति होती देखी जाती है। आख्यात पद ने आख्यान करना है, वर्णन करना। या प्रमाण, प्रमाण शब्द इटसेल्फ क्या है? वो नाम प्रमाण है। प्रमाण नाम रखा है ना हमने, हमें इसका प्रमाण बताओ, तो प्रमाण शब्द आया है। किसी द्रव्य का प्रमाण ये सूचित करता है। तो प्रमाण जो शब्द स्वयं है वो क्या है? वो नाम है। तो वो नाम प्रमाण हो गया। वह यह है। इस प्रकार अभेद की विवक्षा करके काष्ठ शिला और पर्वत में अर्पित वस्तु का न्यास स्थापना प्रमाण है। हमने कहा स्थापना प्रमाण, हमने देखा था स्थापना निक्षेप जिसको हम कहते हैं, किसी वस्तु में कोई अन्य वस्तु ये है ऐसा कह देना, वो स्थापना प्रमाण हो जाता है। शंका, स्थापना को प्रमाणता कैसे है? आपने तो स्थापना की है, उसको प्रमाण कैसे हो सकता है? वो ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थापना के द्वारा इस प्रकार का वह है, इस प्रकार अन्य वस्तु का ज्ञान देखा जाता है। जैसे हम रोज मंदिर में जाते हैं, दादर में कौन से भगवान है? महावीर भगवान, ये महावीर भगवान है, ऐसा वहाँ व्यवहार किया जाता है ना। तो वहाँ महावीर भगवान की स्थापना हुई है, तो ये प्रमाण है कि नहीं है? प्रमाण है, नहीं तो बिना प्रमाण के हम क्या उनकी पूजा करेंगे? तो वहाँ इसको ये प्रमाण है। अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान का तदाकार और अतदाकार रूप से निक्षेप करना स्थापना प्रमाण है। ये तदाकार में भी हो सकता है, अतदाकार में भी हो सकता है। अथवा यह 100 है, यह 1000 है, इस प्रकार की अतदाकार स्थापना स्थापना प्रमाण है। आपके पास नोट है कि 1000 की? हाँ, 1000 की नोट नहीं है आपके पास? 500 की है? 100 की? तो ये 100 है, ये 1000 है, ये 500 है, हमने स्थापना की है उसमें, उन्होंने लिख दिया और हम उसके व्यवहार में उसके यूटिलाइजेशन भी करते, तो ये उसमें स्थापना हो गई ना 1000 की। इस प्रकार अतदाकार स्थापना स्थापना प्रमाण है। आप कहेंगे वो साइज तो अलग अलग है, हो सकता है एक ही साइज में अलग अलग, उसमें वो डॉलर में आता है ना, एक ही साइज की है और उसमें अलग अलग बस नंबरिंग लिख दिया उन्होंने, संख्या हो गई स्थापना। द्रव्य और गुणों के 100 है, 1000 है, ये द्रव्य और गुणों के ने, ये कितने द्रव्य है, कितने आदमी बैठे है, तुम कह 100 है। इस प्रकार के संख्यानुरूप धर्म को संख्या प्रमाण कहते हैं। अर्थात द्रव्य और गुणों की गणना के निमित्त रूप जो संख्यानुरूप धर्म पाया जाता है उसे संख्या प्रमाण कहते हैं। पल, तुला और कुड़व आदि द्रव्य मान है, क्योंकि ये सोना, चांदी, गेहूं आदि दूसरे पदार्थों के परिमाण के ज्ञान कराने में कारण पड़ते हैं। किंतु द्रव्य प्रमाण रूप पल, तुला आदि द्वारा मापे गए जौ, गेहूं, तगर, कुष्ठ नाम की एक दवा और बाला नाम का एक सुगंधित पदार्थ आदि में जो कुड़ और तुला आदि संज्ञाएं व्यवहृत होती है वे उपचार निमित्तक है, इसलिए उन्हें प्रमाणता नहीं है, किंतु वे प्रमेय रूप ही है। अब इसका विशेषार्थ कहेंगे तो ये बात है, क्योंकि अभी हम इन शब्दों को नहीं यूज करते हैं। तोला मासा आदि जो तगर तगर वे फूल। हाँ देखो हम यहाँ विशेषार्थ पढ़ेंगे। एक बहुत छोटी तौल को या चार तोला को पल कहते हैं। ये पल तुला क्या है उसकी बात बता रहे हैं। तौलने के साधन या तराजू को तुला कहते हैं। तराजू कहते हैं, छोटी तराजू होगी तो। और अनाज मापने के एक माप को कुड़ौ कहते हैं। चिपटा, चिपटा कहते थे हम। हाँ चिपटा वो शेर का होता है, उसको शेर कहते थे। पायली जिसमें आती थी उसको पायली, उसी को पायली कहते थे। देखो देखो पहले क्या है, शेर जिसमें, एक शेर धान जिसमें आता था वो माँ, ये जो होता था ना वो ब्रस जिसको कहते, उसी को शेर कहने में आता था। जिसमें एक पायली यानी चार शेर आता था ना, चार शेर की आती थी ना पायली, हाँ उसको पायली कहने में आता था। वो माप को ही पायली कहते थे। और उसमें अनाज कितना आता, एक पायली भर के। वैसे हाँ नहीं, मगर वो ये तो माप की बात है, यानी जिसमें वो आता है उसको, हाँ वॉल्यूम की अपेक्षा। तो यहाँ तो उसको कुड़ौ कहते हैं, अनाज मापने के माप जो है उसको कुड़ौ। हाँ वो वेट है, चार तोला जो तोला है, तोला को हम मापते यानी वजन के द्वारा मापते, वो वजन है। हाँ यानी छोटा एक वजन का माप है वो तोला। वैसे चार तोला को एक पल कहा। परंतु लोक में तौले और मापे जाने वाले सोना और गेहूं आदि पदार्थों में भी तुला और कुड़व आदि संज्ञाओं का चाहिए। संशय हो गया, संज्ञाओं का व्यवहार देखा जाता है। क्या कहते हैं, अभी हमने देखा था ना कि अनाज मापने का नाप क्या है। अभी कुड़व के बदले हम शेर कहेंगे, अभी किलो की जो बात है ना, एक शेर यानी जो माप में आता है वो। जैसे हम कटोरी भर के लेते हैं वैसे वो शेर भर के अनाज हम ले लेंगे गेहूं, तो उसको क्या कहेंगे, एक शेर गेहूं। गेहूं को ही शेर कहेंगे, वो मापने के माप से उस गेहूं को भी एक शेर गेहूं कहते हैं। जैसे कितना, चार तोले का है या एक तोला हमने सोना लिया, तो वो तोला वाला जो माप है, वजन है ना 10 ग्राम सोना, तो सोने को ही वो बता देते। हाँ तो आदि का ग्रहण न करके यहाँ द्रव्य प्रमाण से, द्रव्य प्रमाण में क्या लेना, सोने और गेहूं आदि का ग्रहण न करके तौलने और मापने के साधनों का ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि सोना और गेहूं आदि पदार्थ स्वयं तुला और कुड़ौ आदि कुछ भी नहीं है। सोने के लिए तुला लिखा और गेहूं के लिए कुड़ौ लिखा। सोना स्वयं तुला नहीं है, तुला तो वो साधन को कहते हैं, तोलने के साधन को तुला कहा। सोना स्वयं उसके द्वारा तोला जाता है, स्वयं तुला नहीं है। उनमें तो केवल तुला और कुड़ौ के बराबर परिमाण देखकर तुला और कुड़ौ रूप व्यवहार किया जाता है। इसलिए सोना गेहूं आदि में की गई पल, चार तोले को कहा ना, कुड़ौ आदि संज्ञाएं उपचरित ही जाननी चाहिए, वास्तविक नहीं है। वास्तव में सोना और गेहूं आदि प्रमेय ही है, प्रमाण अर्थात मापने के ये तौलने के साधन नहीं है। ये ख्याल में आया, वो नापे जाते हैं और जो मापने का साधन है उस साधन को हमने प्रमाण कहा। जैसे हम कहें ना शेर किलो, ये जो है वो मापने का साधन है। किलो गेहूं ये तो उसका प्रमेय हो गया, गेहूं कितना है तो एक किलो है। परंतु किलो क्या है, किलो यह प्रमाण है, गेहूं उस प्रमाण में नापा जाता है। हमें 10 किलो चाहिए गेहूं या 10 शेर चाहिए। अगर हम माप से, पहले तो पद्धति थी ना वजन से नहीं, वो माप से भी लेते थे, तो हम वो गेहूं को मापते हैं। परंतु गेहूं स्वयं माप नहीं है, यह माप जो है जिसके द्वारा मापते जो हम प्रमाण उसका देखते हैं उसको यहाँ प्रमाण कहते हैं। समझ में आया? ये जो मापने का जो साधन है, जैसे वजन करते तो हम, हमारे पास वो वजन पड़े ना, वो हम सब्जी लेने जाते, गेहूँ लेने जाते, तो 1 किलो का एक वजन है और उसके द्वारा हम उसको मापते हैं, या कोई साइज का वो बर्तन होगा, 1 किलो इसमें इतना 1 किलो अनाज आता है, जिसको यहाँ एक कुड़व कहा है, तो हमें 4 कुड़व चाहिए, तो 4 कुड़व भर के हमके गेहूँ चाहिए। वो कुड़व तो अलग है, वो तो एक माप है, उसमें भर के हम गेहूं को मापते हैं, तो गेहूं माप नहीं है, जिसको यहाँ प्रमाण कहा है। ये तौलने की बात बताई, तौल के या भर के जो हम लेते हैं उसको भी यहाँ प्रमाण लिया। अंगुल आदि रूप अवगाहनाय क्षेत्र प्रमाण है, एक क्षेत्र में मापते हैं, क्योंकि जिसके द्वारा शेष द्रव्य प्रमित किए जाते हैं अर्थात अवगाहित किए जाते हैं, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की इस व्युत्पत्ति के अनुसार अंगुल आदि रूप क्षेत्र को भी प्रमाणता सिद्ध है। ये अंगुल में भी हम किसी द्रव्य को नाप सकते हैं। शंका, क्षेत्र नियम से आकाश द्रव्य है और इससे विपरीत अर्थात आकाश से अतिरिक्त शेष द्रव्य ऊपर 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 गाथा है, ओहो ऊपर ऊपर है 3 नंबर के। ऊपर की गाथा लेनी है हमको। द्रव्य प्रमाण है ना, पल तुला कुड़व आदि द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी मापने के साधन। देखो देखो 34 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन, पल तुला और कुड़व आदि द्रव्यमान है, उसी को द्रव्य प्रमाण का। एक दो तीन चार सौ हजार आदि वो संख्या प्रमाण है, संख्या मान है, और द्रव्यमान में जो जिन साधनों के द्वारा मापा जाता है उसको यहाँ द्रव्यमान कहा, द्रव्य प्रमाण कहा। क्षेत्र प्रमाण में अंगुल आदि रूप जो है वो क्षेत्र प्रमाण है। अब यहाँ ये 3 नंबर की जो यहाँ सूत्र गाथा सूत्र बताया है, 2 नंबर का कौन सा आया था? नहीं नहीं नहीं, 2 नंबर का सूत्र कौन सा आया था? यहाँ डायरेक्ट 3 नंबर का सूत्र बताया। पहला सूत्र तो हमने वो ज्ञान, हाँ एक ही हुआ, पूर्वमी पंचममी द्वादशमी वत्तुमी, ये 3 नंबर कहाँ से आया? आगे 4-5 है, 3 नंबर का है, 2 नंबर का है क्या? कहाँ पर है? हाँ ये तो ये सादे प्रिंट में बताएं, नहीं मैं वो एक गाथा की पहले आई है। उक्तम च वाली है वो, 9वें पेज पर है पहली, उसके बाद मुझे कहीं दिखी नहीं 2 नंबर की गाथा सूत्र। चलो जो कुछ है, हाँ 24 में चुरनी है वो तो, नहीं आए नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तो हम सूत्र ही देख रहे थे ना। यदि वयना दो, ये भी उक्तम चाहिए किसी के, इन्वर्टेड में है। ये राजवार्तिक की है क्या? खेत प्रमाणी दुवी पन्नते पय निष्पत्ति विभाग निष्पन्न ये कहीं से उद्धृत गाथा ही है, देखो दो बार इन्वर्टेड में डाला है ना उसको, सूत्र में वो इन्वर्टेड में नहीं डालते, नौवे में एक नंबर का सूत्र है उसमें इन्वर्टेड में नहीं डाला है, और इसके एक ही कुछ लाइन उन्होंने कहीं से प्रस्तुत की है, इदि वयनादो लिखा है इस वचन से, यानी उन्होंने किसी अन्य गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है, उद्धरण दिया है, कोटेशन जिसको कहते ना, तो लिखते हैं खेत्तम खलु आयासम तव विवरीयम च होदि नोकेत्तम, वो शंकाकार इसको प्रस्तुत कर रहा है, क्या क्षेत्र नियम से आकाश द्रव्य है और इससे विपरीत अर्थात आकाश से अतिरिक्त शेष द्रव्य नोक्षेत्र है इस वचन के अनुसार, इस वचन यानी वो इन्वर्टेड में डाला है, वो तो ओरिजिनल गाथा सूत्र नहीं है, ओरिजिनल तो पहला ही गाथा सूत्र चल रहा है और उसके ऊपर चूर्णी सूत्र चल रहे सब, इस वचन के अनुसार क्षेत्र प्रमाण जो कि आकाश द्रव्य स्वरूप है, दंडादि प्रमाण के समान द्रव्य प्रमाण में अंतर्भाव को क्यों नहीं प्राप्त होता है, क्या कहते हैं क्षेत्र, हम कहते ना क्षेत्र यानी जो प्रदेशों में नापते हम, तो आकाश द्रव्य प्रमाण होता है, आकाश द्रव्य स्वरूप होता है, तो जैसे दंडादि प्रमाण के समान द्रव्य प्रमाण में उसको क्यों नहीं अंतर्भूत किया, द्रव्य प्रमाण में हमने देखा था जैसे हमको मीटर मापेंगे तो वैसे उसमें क्यों नहीं अंतर्भूत किया क्षेत्र को, इस वचन के अनुसार ये हो गया समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि द्रव्य प्रमाण में द्रव्य पद से अन्य पदार्थों की परिच्छित्ति ने ज्ञान, यानी वहाँ किसी एक से अन्य पदार्थों को नापा जाता है, जैसे हमारे पास वो एक मीटर का वो गज आता है ना, ऐसा लोहे की पट्टी आती है और उससे हमें कितने मीटर कपड़ा चाहिए वो माप के देते हैं, तो वस्त्र को उसके द्वारा नापते हैं, तो द्रव्य प्रमाण में द्रव्य पद से अन्य पदार्थों की परिच्छित्ति में कारणभूत परिणामी द्रव्य जीव और पुद्गल का ही ग्रहण किया जाता है, कारण कि जीव और पुद्गल में वृद्धि और हानि तथा संकोच और विस्तार पाया जाता है, अर्थात पुद्गल द्रव्य में स्कंध की अपेक्षा वृद्धि और हानि होती रहती है तथा जीव और पुद्गल दोनों में संकोच और विस्तार पाया जाता है। हाँ, ये कौन से द्रव्य है वो कारणभूत, ऐसे कौन से द्रव्य है जीव और पुद्गल, उन्हीं का यहाँ पर ग्रहण है। देखो द्रव्य प्रमाण में क्या लेना, द्रव्य पद से द्रव्य शब्द से क्या समझना, द्रव्य और प्रमाण है ना, तो द्रव्य में किसको लेना, तो अन्य पदार्थों के ज्ञान में कारणभूत ऐसा जो परिणामी है उसको द्रव्य लेना, वो द्रव्य में किसका ग्रहण है, जीव और का पुद्गल का, क्योंकि उसमें कम अधिकता होती है ना, इसलिए उसको नापना है। द्रव्य प्रमाण हमें हमने किसको किया, पल तुला कुड़व इत्यादि को हमने लिया, ये सारे पुद्गल ही है ना, कम ज्यादा उसमें ही होता है, उसकंधों की अपेक्षा है वहां पर, इसलिए पुद्गल को लिया है। तो जीव और पुद्गल दोनों में संकोच और विस्तार पाया जाता है, इससे जाना जाता है कि द्रव्य प्रमाण में द्रव्य पद से, द्रव्य प्रमाण जब कहते हैं तो द्रव्य शब्द किसको सूचित करता है, द्रव्य यह जो शब्द है द्रव्य प्रमाण, उसमें जो द्रव्य लिखा है वो किसके लिए है, तो जीव और पुद्गल का ही ग्रहण किया है, किंतु धर्म अधर्म काल और आकाश द्रव्य उस प्रकार परिणामी नहीं है। परिणामी किसको कहना, वो जो परिणाम उसमें बदलते हैं ना, संकोच विसार आदि जो यानी उसके द्वारा नापा जाता है। यह प्रश्न क्या पूछा था, क्षेत्र प्रमाण में आकाश को जो लिया है, आकाश में ही क्षेत्र होता है तो उसको क्यों नहीं लिया, तो उसमें वो कम अधिकता नहीं होती इसलिए उसको वहां नहीं लिया है। ये शंका का समाधान चल रहा है ना, कि क्षेत्र प्रमाण आकाश द्रव्य स्वरूप है, तो उसको द्रव्य प्रमाण में क्यों नहीं अंतर्भूत किया? तो कहते हैं द्रव्य प्रमाण में, द्रव्य में किसको लेना? आकाश को नहीं लेना, ना ही धर्म अधर्म को लेना है, ना ही काल को लेना है, जीव और पुद्गल को लेना। इसलिए द्रव्य प्रमाण में ये क्षेत्र प्रमाण इंक्लूड नहीं किया। आकाश द्रव्य को, आकाश द्रव्य के द्वारा जो मापा जाता है उसको द्रव्य प्रमाण में नहीं लिया, क्योंकि द्रव्य प्रमाण में हम क्या देखते हैं? माप देखते हैं, उसका वजन देखते हैं, साइज में देखते ना, हमने एक शेर अनाज नापा या कटोरी भर के लिया, तो वो कुछ पुद्गल का ही नाप हो गया उसका। इसलिए उसको आकाश की अपेक्षा जो क्षेत्र नापा जाता है उसको द्रव्य प्रमाण में इंक्लूड नहीं किया, परिणामी नहीं। देखो क्या कहते हैं, आकाश द्रव्य उस प्रकार परिणामी नहीं है, क्योंकि उसका कारण बताते हैं, इनमें रूप से रूपांतर। अब कहां कहां वेरिएशन हो सकते हैं? रूप से रूपांतर, रस से रसांतर, गंध से गंधांतर और स्पर्श से स्पर्शांतर। स्पर्श में वजन भी आ गया ना, तो उसका वजन कम या ज्यादा होता है तो उसको स्पर्शांतर कहेंगे। अवगाहना से हुआ, अवगाहना से रह गया। दूसरी लाइन में अवगाहना डालना उसमें, अवगाहना मिला। सेकंड लाइन, अवगाहना से अवगाहनांतर और आकार से आकारांतर रूप परिवर्तन नहीं देखा जाता। किसमें? आकाश में। परंतु ये सो रंग रूप वगैरह जो है वो पुद्गल के है, उसमें तो देखा जाता है, स्कंधों का ये टर्न होता है ना, परिणमन होता है। अर्थात रूप रस गंध और स्पर्श तो उनमें होते ही नहीं है, तथा उनकी अवगाहना और आकार भी अनादिकाल से एक ही चला रहा है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। किंतु जीव और पुद्गल में यह बात नहीं है। पुद्गल में रूप रसादिक बदलते रहते हैं और स्कंद की अपेक्षा उसकी अवगाहना और आकार भी बदलता रहता है। संकोच और विस्तार के कारण वो व्री हुआ है। संकोच और विस्तार के कारण संसारी जीव के भी, देखो संसारी शब्द डाला हो, अवगाहना और आकार में परिवर्तन होता रहता है। अतः द्रव्य प्रमाण में द्रव्य पद से जीव और पुद्गल का ही ग्रहण किया है, अथवा अन्य पदार्थों के परिमाण कराने में कारणभूत द्रव्य प्रमाण है। द्रव्य प्रमाण का लक्षण क्या बताया? अन्य पदार्थों का परिणाम ही उसको नापने में कारणभूत है। द्रव्य प्रमाण के इस लक्षण के अनुसार कुड़व आदि ही द्रव्य प्रमाण कहे जा सकते हैं। कुड़ों में हमने देखा है कोई माप है जिसमें हम अनाज मापते हैं, क्योंकि कुड़ों आदि से जिस प्रकार अन्य पदार्थों का परिमाण किया जाता है उस प्रकार क्रियारहित आकाश क्षेत्र के द्वारा अन्य पदार्थों का परिमाण नहीं किया जा सकता। वो परिणाम बराबर करना, शरीनाम दिखता है। तो भी क्षेत्र का आश्रय लेकर अन्य द्रव्य अवगाहित होते हैं, इसलिए क्षेत्र को प्रमाण संज्ञा है। क्या कहते हैं? अन्य पदार्थ मापे तो नहीं जाते, परंतु क्षेत्र की अपेक्षा उनकी अवगाहना कितनी है ये तो बता सकते हैं, इसलिए वहां क्षेत्र में को भी प्रमाण में लिया उन्होंने। और इसीलिए क्षेत्र प्रमाण में द्रव्य प्रमाण अंतर्भूत नहीं होता यह सिद्ध हो जाता है। द्रव्य प्रमाण में मुख्यतः तो पुद्गल की है, क्योंकि हमें उसमें रस गंध वर्ण स्पर्श आदि नापते हैं, और जीव का भी संकोच विस्तार होता है संसारी अवस्था में, तो उसमें भी वो मनापते हैं। इसी का विशेषार्थ बताएंगे। द्रव्य प्रमाण से क्षेत्र प्रमाण को अलग गिनाया है, यानी वो क्षेत्र प्रमाण द्रव्य प्रमाण में ही क्यों अंतर्भूत नहीं होता, क्यों नहीं इंक्लूड करते, उसका यह समाधान है। इस पर शंकाकार का कहना है कि जिस प्रकार दंडादि प्रमाण द्रव्य स्वरूप होने के कारण द्रव्य प्रमाण से अलग नहीं माने गए हैं, उसी प्रकार क्षेत्र को भी द्रव्य स्वरूप होने के कारण द्रव्य प्रमाण से अलग नहीं मानना चाहिए। क्षेत्र भी द्रव्य स्वरूप होता है क्योंकि वहां उसने आकाश द्रव्य को लिया। उसने इस शंका का यह समाधान है कि द्रव्य प्रमाण में सभी द्रव्यों का ग्रहण नहीं किया है, ये बात यहां मुख्यता है। किंतु जिन द्रव्यों की संयोग रूप अवस्था में गुण विकार और प्रदेश विकार देखा जाता है, वे द्रव्य ही यहाँ द्रव्य प्रमाण पद से ग्रहण किए गए हैं। हमने देखा ना, उसमें तो अवस्थांतर होता है, रस से रसांतर, स्पर्श से स्पर्शांतर वगैरह जो है, तो उसको यहाँ लिखा है। इसलिए पुद्गल द्रव्य कहा। वो जीव और पुद्गल अभी संसारी जीव को लेना ने, वहां छोटा बड़ा होता है उस अपेक्षा से मान लेना, वो पुद्गल में है सब। हाँ बिल्कुल, और जीव में संकोच विस्तार होते हैं, परंतु वो पुद्गल के साथ संयोगी है ना वो, इसलिए उसको भी लिया है, जीव द्रव्य को भी लिया है यहाँ पर। तो कहते हैं ऐसे द्रव्य यानी जिनमें गुण विकार और प्रदेश विकार देखा जाता है, प्रदेश विकार यानी उसकी जो कोई अवस्थाएं बदलती है, ऐसे द्रव्य कौन कौन से? जीव और पुद्गल ये दो ही हो सकते हैं, अन्य नहीं। अन्य द्रव्यों में यद्यपि अनेक अग्रु लघु गुण निमित्तक हानि और वृद्धि रूप परिणाम पाया जाता है, पर वह परिणाम उनमें विभाव रूप नहीं है। अगुरु लघु गुण के निमित्त से जो कोई ये षड्गुण हानि वृद्धि आदि है, वो सभी छह द्रव्य में पाई जाती है। वो कैसे होती है वो तो केवल ही जानते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना अगुरु लघु गुण और उसके अविभाग प्रतिच्छेद भी अलग अलग है। उसमें प्रदेशों की हानि वृद्धि नहीं है, वो उसके भाव जो है पर्यायों के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें, क्योंकि वो तो अर्थ पर्याय है और स्वभाव अर्थ पर्याय है। देखो मिथ्या दृष्टि जीव में भी अग्रु लघु गुण के कारण होने वाली हानि वृद्धि जो है उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहा है। वो हर एक द्रव्य में स्वभाव अर्थ पर्याय रूप से हानि वृद्धि होती है, बिल्कुल होगी। केवल ज्ञान में भी होते हैं षड्गुणी हानि वृद्धि, क्योंकि वो अनादि से ही स्वभाव रूप है, तो सिद्धों में क्यों वो रुक जाएंगे? ख्याल आता है ना? तो यहाँ क्या कहा, पर वह परिणाम उनमें विभाव रूप नहीं है। अन्य द्रव्यों में है वो उसका स्वभाव है, जीव में भी वो स्वभाव रूप है। अगुरु लघु गुण का कारण होने वाली हानि वृद्धि वो स्वभाव रूप पर्याय है। अब यहाँ क्या कहते हैं, तथा संयोग विशेष के निमित्त से जीव और पुद्गल में जिस प्रकार प्रदेश विकार देखा जाता है, क्योंकि वो संयोग होना बिछोड़ना आदि जो है, जीव में भी प्रदेशों का विकार कब होता है? संसारी अवस्था में, वहां तो कर्म का निमित्त है वहां पर, और पुद्गल भी स्कंद अवस्था में वो प्रदेश का विकार कहलाता है, और छुट्टे परमाणु है वो स्वभाव कहलाता है उसका। उस प्रकार का प्रदेश विकार भी अन्य द्रव्यों में नहीं है। अतः धर्मादि द्रव्य जीव और पुद्गल के समान दूसरे पदार्थों के परिमाण के ज्ञान कराने में कारण नहीं होते। इसलिए द्रव्य प्रमाण में केवल जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों का ही ग्रहण किया है। ये दोनों द्रव्य यहाँ अशुद्ध ही लेने चाहिए, विकारी वाले ही लेना है, क्योंकि उसी में तो कि स्वभाव वाले नहीं लेना है, सिद्धों को नहीं लेना। हाँ, फिर भी आकाश के आश्रय से अन्य पदार्थ अवगाहित होकर रहते हैं, अतः आकाश को द्रव्य प्रमाण से भिन्न प्रमाण माना है। आकाश केवल द्रव्य है, इसलिए उसका द्रव्य प्रमाण में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि द्रव्य प्रमाण की हेतुभूत पूर्वोक्त सामग्री आकाश में नहीं पाई जाती। कौन सी सामग्री? वो तो जो अवस्थांतर होना, विकार रूप होना, गुण विकार और प्रदेशों का विकार उसमें नहीं है, इसलिए उसको द्रव्य प्रमाण में इंक्लूड नहीं किया। अभी काल प्रमाण की बात कर रहे हैं, क्षेत्र प्रमाण हो गया, ये सात प्रकार के प्रमाण बता रहे हैं ना, कौन कौन से हो गए अभी तक, नाम हुआ, स्थापना हुआ, संख्या प्रमाण हुआ, द्रव्य प्रमाण और क्षेत्र प्रमाण, पांच हो गए। समय, आवली, क्षण अर्थात स्तोक, लव, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, संवत्सर ने एक साल, एक वर्ष, युग, पूर्व, पर्व, पल्योपम, सागरोपम आदि काल प्रमाण है, काल से वे नापे जाते हैं। यह काल प्रमाण द्रव्य प्रमाण में अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि यहाँ व्यवहार काल का ग्रहण किया गया है, ये तो पर्याय है ना, काल द्रव्य की बात नहीं है, पर व्यवहार काल का ग्रहण है और व्यवहार काल द्रव्य नहीं है। अब इसलिए कहा भी है, ये जो ऊपर चार नंबर दिया है ये भी उत्तम चयन है, इन्हें ऐसा कहा है, ये उद्धृत की उन्होंने, कालो परिणाम भवो परिणामो दौव काल संभूदो दौन्नम एष सहावो कालो क्षण भंगुरो नियदो। ये किसमें थी गाथा, उसमें प्रवचन सार में थी, पंचर्षिका में, ये कुनकुनाचार्य के आगम में आई है गाथा। देखो हमने पुनः एदानी एक पूर्वन लखो देने चौरास पोवन दहुला और पंचासी का गाथा सौ, मगर ये कहाँ से दो नंबर कहाँ आया, पौव पौव के लिए लिखा उन्होंने, पुनः एदानी एक पूर्व वत्सानी ठवेदुन लखी गुणिदेन चौरासी दिवग्गेण गुणिदे पौव मोदी। पर वो किसे कहना, वो उसकी बात नीचे लिखे, देखो देखो, पुणा पुणो एदानी एक पूर्व वस्तानी, एक पूर्व किसको कहते मालूम है, 70,56,000 करोड़ वर्ष, और दूसरी भाषा में बोलना है तो 84 लाख का वर्ग है वो, उसको एक पूर्व कहते हैं। तो एदानी एक पूर्व वस्तानी ठवे दून, एक पूर्व वर्ष को रखना, लिखना, एक पूर्व को लिखेंगे, लख गुणी देना, लाख से गुणा करके, चौरासी दिवग्गेण गुणी दे, यानी लख गुणी देना, चौरासी दिवग्गेण गुणी दे पवम होदी। दूसरी भाषा में एक पूर्व को 84 लाख वर्षों के वर्ग से गुणा करने पर, यानी पूर्व इंटू पूर्व ही पर्व हो जाता है ना, ऐसे अर्थ होता है ना इसमें से, 1 लाख से गुणित 84 के वर्ग, 1 लाख से गुणित 84 का वर्ग इंटू 84 का वर्ग, लेकिन 84 दी वग्गे ना सीधी 84 असीधी, असीधी ने वो तो हाँ 84 गुणिदे पंच ध आप 882 पौव होदी। अब ये जो गाथा है नीचे की, ये दो नंबर कहाँ लिखा है उन्होंने, ये 85 काई की गाथा ही होनी चाहिए 100 नंबर की, उन्होंने नंबर नहीं डाला है क्योंकि दो नंबर कहीं आया नहीं ऊपर, एक नंबर जैसे पौव के लिए आया है वैसे दो नंबर शायद ये गाथा के लिए होना चाहिए था। ये आई है गाथा, मुझे याद है। अब हम देखते हैं, समय, निमिष आदि व्यवहार काल जीव और पुद्गल के परिणाम से व्यवहार में आता है, अतः वह परिणाम से उत्पन्न हुआ कहा जाता है, तथा जीव और पुद्गल का परिणाम उसके निमित्तभूत द्रव्य काल के रहने पर ही उत्पन्न होता है, अतः वह काल द्रव्य के द्वारा, द्रव्य काल के द्वारा उत्पन्न हुआ कहा जाता है। व्यवहार काल और निश्चय काल का यही स्वभाव है उनमें से व्यवहार काल क्षणभंगुर है और निश्चय काल नियत है। निश्चय काल यानी काल द्रव्य और व्यवहार काल यानी उसके एक समय की पर्याय जिसको हम समय कहते हैं। तो अनेक समयों का पल होगा, फिर उसके जो हमने देखे ना आगे आगे उसको हम कहेंगे एक सेकंड हुआ, मिनट हुआ, घंटा हुआ, एक दिन हुआ, 15 दिन हुए, एक हफ्ता हुआ, तो ये सारे व्यवहार कालों में गिने जाते हैं। इस सूत्र गाथा से व्यवहार काल को द्रव्यपना नहीं है यह सिद्ध हो जाता है। देखो श्वेतांबर में ऐसी मान्यता है, जीव और पुद्गल का परिणाम, जीव और पुद्गल का जो परिणमन है, जैसे हम घड़ी में देखते कितने हुए सेकंड हुए, तो वहां क्या देखते हैं, वो जो उसका काटा है घड़ी का वो तो इतने समय में आगे गया, तो उसको वो समय की वहां वो है तो चला, तो अपना परिणमन है उसका, तो उसके लिए कितना काल लगा, तो हम ये व्यवहार काल में नापते उसको। काल द्रव्य का निमित्त है ना, उसमें प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में काल द्रव्य का निमित्त है, और जीव और पुद्गलों का जो परिणमन नापा जाता है परिणमन के द्वारा हम नापते हैं, उस परिणमन के द्वारा हम दिखाते हैं, तो उस परिणमन में निमित्त है काल द्रव्य, और काल द्रव्य तो अनादि अनंत है, तो उसमें जो व्यवहार काल है कितने समय पास हुए। हम जब कहते ना बच्चा 1 साल का हुआ, तो 1 साल का हुआ क्या है, बच्चा बढ़ा ना, तो कितना बढ़ा, तो एक एक साल में एक एक समय में उसका परिणमन होते 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 1 साल में इतना हो गया वो, तो हम कहेंगे बच्चा 1 साल का हुआ, तो उसको नापने के लिए वहां व्यवहार काल को हम लेते हैं। हमें तो काल को नहीं बताना है, हमें तो वो जीव में जो कोई परिवर्तन हुआ है उसी को बताना है। शरीर में भी होते हैं ना जो भी पुद्गल में भी परिवर्तन होते हैं उसके द्वारा हम नापते हैं विशेषार्थ, इसी को बताते। फिर छहों द्रव्यों की एक पर्याय से दूसरी पर्याय के होने में अंतरंग कारण प्रत्येक द्रव्य के अनंत अग्र लघु गुण हैं, और बाह्य साधारण निमित्त कारण काल द्रव्य है। ये अनंत अगुरु लघु गुण पहले भी ये बात आई थी, बहुत सारे है करके, वहां भी मुझे आश्चर्य लगा था कि एक नहीं अनेक बताए, अनेक थे ऐसा। देखो जहां लिखा था सिद्धों में अन्य भी होता है अनेक अगुरु लघु निमित्तक, देखो 36 पृष्ठ पर विशेषार्थ में 7वीं लाइन, अन्य द्रव्यों में मिला यद्यपि अनेक अगुर लघु गुण निमित्तक, हानि और वृद्धि होती है। और यहाँ क्या लिखते हैं, छह द्रव्यों की एक पर्याय से दूसरी पर्याय के होने के अंतरंग कारण प्रत्येक द्रव्य के अनंत अगुर लघु गुण है। अपन इंडिविजुअल अनंत हो गए, प्रत्येक द्रव्य के लिखा है, ऊपर नहीं लिखा ना, ये तो विशेषार्थ में लिखा है, आगे आएगी कहीं देखेंगे। और बाह्य साधारण निमित्त कारण काल द्रव्य, साधारण निमित्त है ना, सबके लिए कॉमन ही है ना, हर एक के लिए कोई अलग अलग काल द्रव्य नहीं है, बाह्य साधारण निमित्त कहा। प्रत्येक द्रव्य की एक पर्याय से दूसरी पर्याय के होने में जो काल लगता है उसे आगम में समय कहा है, जो काल द्रव्य की परिवर्तन स्वभाव से उत्पन्न होने वाली अर्थ पर्याय है। ये समय क्या है, काल द्रव्य की अर्थ पर्याय है। यद्यपि अति सूक्ष्म होने के कारण सौक्षमिक ज्ञानों के द्वारा इसका ग्रहण तो नहीं हो सकता, फिर भी मंद गति से गमन करते हुए एक परमाणु के द्वारा एक कालाणु से व्याप्त आकाश प्रदेश के व्यतिक्रमण करने में जितना काल लगता है, आगम में उस काल को समय कहा है। अतः इस काल में जो समय का व्यवहार होता है वह पुद्गल निमित्तक है, और इसके समुदाय में यानी काल व्यवहार काल जो है समयों के समुदाय में आवली और निमिष आदि रूप व्यवहार तो स्पष्टतः जीव और पुद्गल के परिणमन के निमित्त से होता है, अतएव सब व्यवहार काल कहा जाता है। सभी छह द्रव्यों के परिणमन में अपने में भी परिणमन तो उसका स्वयं का स्वभाव है। यहाँ तो लिखा है ना परिवर्तन स्वभाव से उत्पन्न हुई वो काल द्रव्य की एक समय की पर्याय व्यवहार काल उद्गल के परिणमन द्वारा व्यवहार काल को नापा जाता है। काल को डायरेक्ट कैसे नापेंगे हम? आपको हमने पूछा कि आप काल को नापना, अभी से लेकर 5 मिनट के बाद हमको बताओ कितना काल बीत गया, आप कैसे नापेंगे? क्या आधार है आपके पास? घड़ी देखकर बताएंगे। तो ये पुद्गल को देखकर बताए ना आपने, पुद्गल में जो कोई हाँ जीव के तो जीव में जो कोई वहाँ परिणमन में जीव के परिणमन क्योंकि वहाँ उसका विभाव भी हो रहा है ना। हाँ अनादि से नहीं, अभी मनुष्य पर्याय कितने काल तक है उसको हम गिनेंगे ना, कितने जो हम यहाँ सभी काल का परिणाम परिमाण बताते हैं, अंतर्मूर्त तक की बात करते हैं या इतने की बात करते हैं। मुख्यतः यहाँ तो पुद्गल के क्योंकि हम पुद्गल के द्वारा ही सारा व्यवहार हमारा चलता है। हाँ। ये छोटा बड़ा भी जो बताया जाता है ना, ये बच्चा बड़ा है ये छोटा है, इसमें भी वो व्यवहार काल की अपेक्षा है। अर्थ पर्याय है वो उसकी व्यंजन पर्याय तो नहीं है, उसके प्रदेशत्व गुण की तो बात नहीं है। काल पर्याय का जो परिणमन जो है, परिणमन तो आकार में भी होता है ना, स्वभाव पर्याय है उसका क्या है, एक प्रदेश ही है, तो काल के प्रदेश को नहीं मापना है। अन्य गुण की जो पर्याय है कैसे, परिवर्तन वाली जो है वर्तना जिसको कहते हैं वो समय में, उसको हम समय कहते हैं, इसलिए उसको अर्थ पर्याय कहा। देखो देखो आगे तो व्यतिक्रम होता है उसको हमने देखा था, पुद्गल निमित्त तक भी नीचे लिखा ना, ये जो आवली वगैरह व्यवहार तो स्पष्टतः जीव और पुद्गल के परिणमन के निमित्त से होता है, अतः यह सब व्यवहार काल कहा जाता है। इससे निश्चित हो जाता है कि इस व्यवहार काल का उपादान कारण काल द्रव्य है, क्योंकि वो काल द्रव्य की पर्याय है, और बाह्य निमित्त कारण जीव और पुद्गलों का, विशेषकर केवल ढाई द्वीप में स्थित सूर्य मंडल का परिणमन है। क्या कहते हैं ये, हम दिन रात कैसे नापते हैं? सूर्य के भ्रमण, अभी सुबह हुई, अभी दोपहर हुई, अभी रात, तो ये जहाँ सूर्य मंडल का परिभ्रमण होता है, ये जो नक्षत्र है तारे है उसके द्वारा जो नापते हैं, चंद्र के द्वारा सूर्य के द्वारा तिथियां वगैरह नापते हैं ना, ये काल एक साल बीत चुका या कौन सा महीना चल रहा है क्या, तो उसकी जो राशियों का इसका प्रमाण है। ढाई द्वीप क्यों लिया, मनुष्य वहां तक है, आप क्या कहते? हाँ बराबर है। हाँ ये जो सूर्य मंडल का भ्रमण है वो तो ढाई द्वीप तक ही है, ढाई द्वीप के बाहर सभी तारा और जो कुछ चंद्र परिवार आदि है वो स्थित है, जहां का वहां स्थित है। वहां दिन और रात का भेद नहीं है, वहां दिन और रात के भेद नहीं है, ऐसा दिन रात का भेद तो स्वर्गों में भी नहीं है ना ही नरकों में है। हाँ तो मापने का कोई अलग तरीका ढूंढा होगा ना वहां पर कैलेंडर
हाँ
कहाँ? चंद्र सूर्य हो गए भले, परंतु वो स्थित है जहाँ के वहाँ। हाँ, चारों कोनों में नहीं है। तो जहाँ जहाँ अंधेरा होगा वहाँ अंधेरा ही है, और जहाँ सूर्य चंद्र है वहाँ तो उनका प्रकाश ही होगा। ढाई द्वीप के बाहर की बात कर रही मैं। हमने देखा था ना कि कौन से समुद्र में कितने पटल होते हैं, क्या होते। हाँ, वो तो अंधेरे के वो पट्टे तो हाँ नीचे से ऊपर तक है। नहीं, वहां तो कल्प वृक्ष होते हैं ना। परंतु अपने अपने विमान छोड़कर नंदीश्वर द्वीप की ओर जाते हैं ना, तो बीच में अंधेरे के पट्टे आते हैं, तो वहां ऐसा वर्णन आता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टियों के पकड़ कर चले जाते हैं उनको। जैसे बेटे माँ का हाथ पकड़ कर जाते हैं ना। अतः व्यवहार का द्रव्य न होकर पुद्गल और जीव द्रव्य के परिणाम से व्यवहार में आने वाली काल द्रव्य की औपचारिक पर्याय है। तो देखो, इसको कहते हैं काल द्रव्य के कारण होते हैं परत्व, अपरत्व और वर्तना वगैरह, ये सारे पांच बातें उसकी बताइए। ये छोटा है बच्चा, ये बड़ा बच्चा है, हम काल की अपेक्षा बता देना, ये जीव का परिणाम उसमें निमित्त है। काल की अपेक्षा आता है ना, ये पास है ये दूर है, ये जो कोई इसका स्पीड हम नापते हैं वो भी काल की अपेक्षा उसमें आते हैं। पुद्गल का परिवर्तन परिणमन उसमें निमित्त है, इसलिए उसे द्रव्य प्रमाण में ग्रहण न करके स्वतंत्र प्रमाण कहा है। अभी तक कौन कौन से प्रमाण हुए? नाम, स्थापना, संख्या, द्रव्य, क्षेत्र, काल। अभी छठा, हाँ सातवा, सातवा नाम ज्ञान प्रमाण। ये ज्ञान प्रमाण की बात है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से पांच प्रकार का है। शंका, ज्ञान प्रमाण है ऐसा चाहिए, सा हुआ है ऐसा कथन करने पर नहीं नहीं मति शुद्ध ज्ञान सभी पांचों ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। देखो आगे, इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। ज्ञान प्रमाण है ऐसा कथन करने पर संशय, अनध्यवसाय और विपर्य ज्ञानों को भी प्रमाणता प्राप्त होती है। ख्याल में है? तो मिथ्या ज्ञान को भी प्रमाण मानना पड़ेगा। तो कहते नहीं, समाधान करते, क्योंकि प्रमाण में आए हुए प्र शब्द के द्वारा, प्रमाण कहा ना, संशय आदि की प्रमाणता का निषेध कर दिया है। निषेध करो उसको, क्या कहते हैं, प्रमाण बताया। ज्ञान प्रमाण कहने से केवल मात्र ज्ञान मानने का, ज्ञान प्रमाण कहा, तो प्र कहने से वो मिथ्या ज्ञान को रूल आउट किया है। संशय आदि को है ने? संशय, अनध्यवसाय और विपर्य, ये मिथ्या ज्ञान का लक्षण है। तो संशय आदि की प्रमाणता का निषेध किया, यानी उनको प्रमाणता होने का निषेध किया। संशय ज्ञान प्रमाण ज्ञान नहीं है ऐसा बताया। अनध्यवसाय वाला ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान नहीं है, विपरीत ज्ञान वो प्रमाण ज्ञान नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। तो क्या सिद्ध हुआ? सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। भले वो मति श्रुत ज्ञान है, फिर भी वो प्रमाण ज्ञान है। हाँ, देखो, प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं बता रहे, प्रमाण ज्ञान बता रहे। सच्चा ज्ञान है कि नहीं है? सम्यक ज्ञान सच्चा ज्ञान है कि झूठा ज्ञान है? हाँ, तो प्रमाण ज्ञान की बात है। देखो, चूर्णी सूत्र में जो सात प्रकार के प्रमाण बतलाए हैं, उनमें ज्ञान प्रमाण ही प्रधान है, क्योंकि उसके बिना शेष समस्त प्रमाणों के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है। ज्ञान ही नहीं होगा तो अन्य का प्रमाण जानेगा कौन? इंद्रिय और मन के निमित्त से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधादिक विषयों में अवग्रह, यहाँ अवाय और धारणा रूप जो ज्ञान होता है, वह मति ज्ञान है, क्योंकि इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष के अनंतर उसकी उत्पत्ति होती है। जो ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और मति ज्ञान के द्वारा विषय किए गए अर्थ से पृथकभूत अर्थ को विषय करता है, वह श्रुत ज्ञान है। इसकी तो बात हमने बहुत बार देखी है। हाँ, कॉन्टैक्ट सन्निकर्षण है विशिष्ट। अभी जो आंखों के द्वारा सन्निकर्षण है वो प्राप्त होने को नहीं किया, सन्निकर्षण है आंखों के द्वारा जो देखते हैं, तो विशिष्ट रेंज में पदार्थ है उसी को देखेंगे। आंखों के द्वारा यहां से हम नरक की बात तो नहीं देख रहे हैं, तो उसकी भी अधिक से अधिक कोई रेंज है वो तो होगी। आप कितना दूर तक के देख सकते हैं? अरे चंद्र सूर्य को देखते हैं ना, वो तो कितने सैकड़ों योजन दूर है। तो ये सन्निकर्षण विशिष्ट उसकी रेंज में होने चाहिए। और श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जिस पदार्थ को जाना है उस पदार्थ के द्वारा अन्य पदार्थ को जानते हैं, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। यदि ऐसा न माना जाए, अर्थात यदि केवल मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को ही श्रुत ज्ञान माना जाए, यानी मति ज्ञान से जो ज्ञान होता है उसी को अगर श्रुत ज्ञान मानेंगे और उसका विषय मति ज्ञान से पृथक न माना जाए, तो इहादि ज्ञानों को भी श्रुत ज्ञानत्व का प्रसंग प्राप्त होगा, तो यह ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहना पड़ेगा। क्योंकि श्रुत ज्ञान की तरह इहादि भी अवग्रहादि मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, यानी मति ज्ञान पूर्वक होते हैं इसलिए वो श्रुत ज्ञान ऐसा नहीं है। इहा अवग्रह विषय तो दोनों का एक ही ना, अवग्रह से जिसको जाना उसी को यह जान रहे, परंतु श्रुत ज्ञान हाँ, तो श्रुत ज्ञान जो है वह मति ज्ञान से जो पदार्थ जाना है उससे अन्य पदार्थों को जानता है, और मति ज्ञान के जो भेद है अवग्रह है उसी एक ही पदार्थ के बारे में वो मति ज्ञान हो रहा है। क्योंकि श्रुत ज्ञान की तरह इहादिक भी अवग्रादि मति ज्ञान पूर्वक होते, वह श्रुत ज्ञान उपदेशक पूर्वक भी होता है और बिना उपदेश के भी होता है। हम कहते हैं ना श्रुत ज्ञान उपदेश के द्वारा होता है वो, क्योंकि हमने सुना और फिर वो, तो बिना उपदेश के भी होगा। इसलिए श्रुत ज्ञान उपदेश पूर्वक ही होता है, ऐसा एकांत नियम नहीं है वो रू का नम करना। क्योंकि अब यहाँ फिर गाथा प्रस्तुत करते हैं। ये जो यहाँ एक लिखा है ना वो गोमरसार जीवकांड की गाथा 333 की है। पन्नवण इच्छा भावा अनंत भागो दु अणहिलप्पाणम पन्नवण इच्छाणम पुनः अनंत भागो सुदनि पत्थो। उसका अर्थ लिखते हैं यहाँ पर, अनभिलाप्य पदार्थों के, अर्थात जो पदार्थ शब्दों के द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं उनके अनंत वे भाग प्रमाण प्रज्ञान पीय प्रज्ञा न पीय प्रज्ञा पीय प्रज्ञापन करना प्रज्ञापनीय चाहिए। प्रज्ञानपीय नहीं होता, प्रज्ञापनीय चाहिए। प्रज्ञापनीय नपीय के बदले पनीय चाहिए, प्रज्ञापनीय, क्योंकि प्रज्ञानपीय का कोई अर्थ नहीं है। फिर पढ़ती हूँ मैं, अनभिलाप्य पदार्थों के, अर्थात जो पदार्थ शब्दों के द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं उनके अनंत वे भाग प्रमाण प्रज्ञापनीय, अर्थात प्रतिपादन करने के योग्य पदार्थ है, यानी सभी का प्रज्ञापन नहीं कर सकते, अनंत विभाग प्रमाण ही कर सकते हैं। और हाँ, आगे आया शब्द देखो, और प्रज्ञापनीय, यानी हमने करेक्शन किया वो सही है, प्रज्ञापनीय पदार्थों के अनंत विभाग प्रमाण श्रुतनिबद्ध पदार्थ है। देखो यहाँ ऐसी गाथा है उसमें गुमटसार में कि केवल ज्ञानियों ने जो हुआ समय, केवल ज्ञानियों ने जितना जाना है उसके अनंत वे भाग उनके ओंकार ध्वनि में आया है। उसमें जितना उन्होंने बताया ओंकार ध्वनि में, वो तो बीज पदों में ही होता है, उसका अनंत वा भाग गणधर अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा जानते हैं। जानने में तो बहुत सारा है, परंतु कथन में लिमिटेशन है, तो उसके अनंत वे भाग रूप वो द्रव्य श्रुति की रचना होती है। ये बात यहाँ बता रहे, इसकी फिर कल बात करेंगे हम, अभी समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। मयंक भाई।